बेटे, यह भी आदमी का एक योगाभ्यास है और यह भी तपश्चर्या है। सहृदयता का होना, हृदयवान का होना।
हृदयवान होने से मतलब यह है कि दूसरों के डखों को, दूसरों के कष्टों को देख करके आपकी आंखों में जब आंसू आ जाते हैं तो बेटे मैं आपको हृदयवान कहता हूँ और दूसरों को सुखी बनाने में आपको उतनी ही खुशी होती है जितना कि स्वयं को सुखी देखकर उत्साह आता है और वैसा ही उत्साह दूसरों के लिए आता है, तो मैं आपको सहृदय कहूँगा।
सहृदय व्यक्ति को क्या मिल सकता है, तुम जैसी चाहो वैसी कथा बता दूँ।
कहें तो मैं पुराणों की कथा बता दूँ और कहें तो अभी की इतिहास की बात बता दूँ। पुराणों पर तेरा विश्वास है?
हाँ महाराज जी।
थोड़ा थोड़ा तो है।
तो चल मैं थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। संत एकनाथ की करुणा। मित्रों,
एक कथा संत एकनाथ के जीवन की आती है। संत एकनाथ कंधे पर कांवड़ रख करके गंगाजल लेकर के रामेश्वर पर जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे।
रास्ते में एक गधा मिला जो प्यास की वजह से अपने प्राण त्याग रहा था।
संत एकनाथ ने यह मुनासिब समझा कि एक के प्राण की रक्षा हो सकती हो तो यह ज्यादा अच्छा है। देवता न प्रसन्न होते हों क्या हर्ज है,
वैकुंठ न मिलता हो तो क्या हर्ज की बात है।
उन्होंने गंगाजल उतारा और गधे के मुंह में डाल दिया। गधे ने लंबी सांस खींची और कहा कि एक घड़ा पानी और मिल जाता तो शायद हम इस लायक हो जाते कि इस जंगल में से निकल जाते। एकनाथ ने दूसरा वाला घड़ा, जो रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए सुरक्षित रखा था, उसे भी गधे के मुंह में डाल दिया। गंगाजल के दोनों घड़े पीकर के गधा खड़ा हो गया और हंसने लगा और कहने लगा कि आओ एकनाथ, हम और आप छाती से मिला करके मिलें। उन्होंने कहा, चल चल, गधे के साथ मैं क्यों मिलूंगा, मैं गधा थोड़े ही हूँ। तो कौन हैं आप?
हम तो रामेश्वरम हैं।
यहाँ कैसे पड़े हैं? हम यह तलाश करने के लिए पड़े हुए थे कि किसी के पास दिल भी है क्या, हृदय भी है क्या।
हृदय मीन्स करुणा।
करुणा भी किसी के अंदर है क्या? दर्द भी किसी के अंदर होता है क्या? संवेदनाएं भी किसी के अंदर हैं क्या? दूसरों से सहानुभूति रखने वाले भी दुनिया में कहीं रहते हैं क्या? हम यह देखने आए थे कि संत का लिबास पहने ढेरों आदमी घूमते थे, लेकिन वह आदमी जो करुणा से ओतप्रोत हो, देखा नहीं है। तो हम रामेश्वरम पर यह देखने आए थे कि कहीं हमको संत के साक्षात्कार हो जाएं, संत के दर्शन मिल जाएं, तो हमारी आंखें धन्य हो जाएं। हमने आपको संत के रूप में देख लिया, आपके हृदय में भरी हुई करुणा को देख लिया। आइए, आप संत हैं, हम आपको छाती से लगाएं। संत एकनाथ ने गधे को छाती से लगाया और कहा कि हमने भी भगवान को पा लिया पीड़ित और पतित के रूप में। पीड़ा पतन का करे निवारण।
मित्रों,
पीड़ा और पतन निवारण के लिए भगवान दोनों हाथ पसारे बैठे हैं। पीड़ा पुकारती है कि आप कुछ मदद कर सकते हो तो कीजिए। पतित पुकारता है कि आप हमारी मदद कर सकते हो तो हमें ऊंचा उठा दीजिए।
पीड़ा और पतन बेटे,
ये भगवान के दो हाथ हैं जो यह मांगते हैं कि आप हमको कुछ दें, फिर हम आपको देंगे। संत एकनाथ ने कहा कि हमने आपको पीड़ित और दुखियारे के रूप में, पतित के रूप में पा लिया। भगवान ने कहा कि हमने आपको सहृदय और सज्जन के रूप में पा लिया। हम आपको अपनी छाती से लगाते हैं। दोनों मिले, यह कौन सी कथा है? यह पुराणों की कथा है। आपको पुराणों की कथा पर विश्वास है कि नहीं?
चलिए मुस्लिम धर्म की एक कथा और बता देता हूँ, फिर इतिहास की कथा बताऊंगा।
पुराणों की कथा पर आपका विश्वास नहीं होगा। हजरत मूसा को खुदाबंद करीम ने बुलाया और उन्हें अपनी बनाई हुई नई जन्नत दिखाए और कहा कि हमने स्वर्ग बनाया है, तो यह किसके लिए है? नमाज पढ़ने वालों के लिए, जकात देने वालों के लिए, काबा जाने वालों के लिए, रोजा रखने वालों के लिए, सबके लिए एक एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ था।
हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा, हजूर,
यह किसके लिए है और खाली क्यों पड़ा है और इसमें कोई क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा, यह संतों के लिए बनाया था, पर संत इसमें नहीं आते। हजरत ने पूछा, क्यों? संत क्यों नहीं आते? संत दुनिया में है नहीं क्या? संत है तो सही, पर कोई आने को तैयार नहीं होता।
क्यों?
संत कहते हैं,
न त्वा काम्ये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम। काम्ये
प्राणियों की पीड़ा और प्राणियों का डैक दूर करने में जो हमको आनंद आता है, यहाँ हराम का माल उड़ाने में क्या आनंद आएगा?
यहाँ बैठे बैठे याशी किया कीजिए, इंद्र देवता की यहाँ नृत्य देखा कीजिए, शराब पिया कीजिए, कल्पवृक्ष के माल उड़ाया कीजिए।
मौज मजा करने में क्या आनंद हो सकता है? शरीर की इंद्रियों को आनंद हो सकता है, पर हमारी अंतरात्मा को जो आनंद हो सकता है, वह दुखियारों की, पीड़ितों की, पतितों की सेवा करने में होता है। बेटे, मूसा ने कहा, अब समझ गए होंगे कि स्वर्ग में संत क्यों नहीं आते।
ऋषियों की भी यही कामना थी, न त्वहम काम्ये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम। स्वर्ग की हमको अपेक्षा नहीं है।
किसी चीज की हमको अपेक्षा नहीं है।
हम तो काम्ये
प्राणियों के डहकों से हम डहकी हो जाते हैं और डहकी होकर के उनकी सेवा करने के लिए अपना सारा श्रम लगा देते हैं। इससे ज्यादा आनंद हमको कहाँ मिल सकता है।
बेटे,
यह बात हजरत मूसा की है।
अच्छा महाराज जी,
हमारे शंकर जी की बात बताए।
तो बेटे, शंकर जी की बात सुन। एक बार सोमवती अमावस्या के दिन हजारों लाखों आदमी गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, महाराज जी,
यह क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों जमा है?
शंकर जी ने कहा, आज सोमवती अमावस्या है, इस सोमवती अमावस्या के स्नान से क्या फायदा है? शंकर जी बोले, जो कोई आदमी आज के दिन गंगा नहाता है, सो वैकुंठ को चला जाता है। पार्वती जी चुप हो गईं और कुछ विचार करने लगी। उन्होंने कहा, क्या बात है?
वैकुंठ तो महाराज जी वही है जिसमें हम और आप रहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ तो वहाँ तो 2000 लोगों के रहने की जगह नहीं है और ये तो 50 लाख लोग स्नान कर रहे हैं।
अगर ये 50 लाख आदमी स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ रहेंगे कहाँ?
हर साल में कितनी सोमवती अमावस्या होती है?
4-5 तो होती ही हैं। तो महाराज जी, ये तो 2 करोड़ आदमी हो गए।
2000 आदमियों की जगह नहीं है और हर साल 2 करोड़ लोग जाएंगे, तो 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में तो वहाँ करोड़ों, अरबों, खरबों आदमी हो जाएंगे।
फिर ये रहेंगे कहाँ? निर्मल अंतःकरण से होगा गंगा स्नान। पार्वती जी ने कहा, यह बात गलत है कि सोमवती अमावस्या पर स्नान करने वाला हर व्यक्ति वैकुंठ को जाता है। हर व्यक्ति वैकुंठ को नहीं जा सकता। नहीं पार्वती,
जाता है, यह शास्त्रों में लिखा है। नहीं महाराज जी, नहीं जाता होगा, शास्त्रों में गलत बताया गया होगा। नहीं, ठीक लिखा है। अच्छा, शंकर जी ने कहा, देखो ये जो नहाने जा रहे हैं, ये तमाशबीन हैं, ये घुमक्कड़ हैं, ये पर्यटक हैं, ये मेला ठेला देखने के लिए आए हैं। गंगा जी नहाने का इनका मन ही नहीं है। बद्रीनाथ की यात्रा पर जो लाखों आदमी जाते हैं, ये घुमक्कड़ हैं, पर्यटक हैं, ये ऐसे ही मटर गश्ती करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ से डोल डालकर आ जाते हैं, पर महाराज जी, ये तो गंगा स्नान करने आए हैं। नहीं, गंगा स्नान के लिए नहीं आए हैं।
कैसे?
चलिए मैं तुम्हें बताता हूँ।
गंगा स्नान करने वाला वह व्यक्ति होगा जिसका हृदय, जिसका अंतःकरण भी गंगा के जल की भांति निर्मल होगा,
भीतर भी जिसने अपने आप को निर्मल बनाया होगा और बाहर से भी बना रहा होगा। ऐसा व्यक्ति गंगा जी में नहाने वाला है, बाकी सब तमाशबीन हैं। ठंडी में नहा रहे हैं तो तमाशबीन कैसे हो सकते हैं?
शंकर जी बोले, चलिए तुम्हें दिखाऊं। मित्रों,
दोनों ने अपना रूप बदल लिया। पार्वती जी ने बहुत ही सुंदर रूप बना लिया और शंकर जी ने बुढ़े कोड़ी का रूप धारण कर लिया। जिधर से गंगा नहाने वाले जा रहे थे, उसी रास्ते में जा बैठे। जो भी गंगा नहाने वाला निकले, मजाक करे और कहे कि अरे यहाँ इस बुढ़े के साथ क्या करेगी?
कौन है यह बुढ़ा? यह बुढ़ा हमारा पति है।
तेरा पति है तो इसको धकेल दे गंगा जी में, बुढ़ापे में इसने ब्याह कर लिया, इसके साथ क्यों आ गई? अच्छा तो फिर क्या करूँ?
हमारे घर चल, हमारे यहाँ मकान है, भैंस दूध देती है, सोने चांदी के जेवर पहना देंगे।
जो भी आए उस बेचारी से ऐसी ही बातें कहते चले गए।
कोई रुपया दिखाता, कोई मिठाई दिखाता। पार्वती जी की बड़ी आफत आ गई। उन्होंने कहा, महाराज जी,
जिंदगी भर देवताओं ने हमें माताजी कहा, आप हमें इन गंगा स्नान वालों के पास ले आए हैं, ये हमारी कैसी मिट्टी प्लीत कर रहे हैं? शंकर जी बोले, देख लीजिए, आप ही कह रही थीं कि ये गंगा जी नहाने आए हैं, ये कोई गंगा नहाने नहीं आए, वरन मौज मस्ती करने आए हैं, इनका गंगा जी से कोई संबंध नहीं है।
शाम तक यह सब देखकर पार्वती जी बोली, महाराज जी, यह तो घोर कलयुग आ गया, ढोंगी चालाकियां ही, बेईमानी ही छा गई है, चलिए यहाँ से।
शंकर जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि पार्वती जी के मन में अनास्था छा जाए, सो उन्होंने कहा, देखो कोई ऐसा भी होगा जो वास्तव में गंगा नहाने आया होगा।
ठीक है महाराज जी, वह भी दिखा दीजिए।
बस थोड़ी देर में एक आदमी आया।
उसने दोनों को देखा और पूछा, देवी
ये कौन है? पार्वती जी बोली, ये हमारे पति हैं और कोढ़ी हो गए हैं, कोढ़ी होने की वजह से गंगा स्नान के लिए इन्हें हम कंधे पर रख कर लाए हैं, हम थक गए हैं इसलिए यहाँ बैठ गए हैं, गंगा थोड़ी दूर रह गई है, यह कोई 1-2 मील, कुछ देर में चलेंगे और इन्हें गंगा स्नान करा देंगे। अच्छा देवी, आप धन्य हैं, आप जैसी नारियों की वजह से पृथ्वी पर सूरज और चांद टिके हुए हैं और जमीन टिकी हुई है, आप जैसी नारियां ना होती तो यहाँ धर्म कहाँ रह पाता, धन्य हैं आप। और उनकी परिक्रमा करके कहा, माता आप आज्ञा दे तो मैं कुछ सेवा कर दूं।
क्या
माँ, मैं हूँ तो बड़ा गरीब और मैं चाहता हूँ कि आपके पति को अपने कंधे पर बैठाकर गंगा जी तक मैं लेकर के चलूं। इनका तो खून मवाद टपकता है, तुम कैसे लेकर चलोगे?
नहीं माताजी, आप आज्ञा दे दें तो मैं आपके पति को लेकर के चलूंगा।
जिनके शरीर से मवाद टपक रहा था, बदबू आ रही थी, उन्हें अपने कंधे पर लेकर 2 मील तक वह आदमी गया और गंगा स्नान कराया और मक्के के सत्तू जो उसके पास थे वे निकाले और बोला, आप भी खा लीजिए और हम भी खाएंगे। सत्तू को 3 हिस्सों में बांटा,
एक हिस्सा पार्वती जी को दिया, एक हिस्सा महादेव जी को दिया और एक स्वयं खाने लगा। पार्वती से महादेव जी ने कहा, देखो यह एक ही आदमी है जो स्वर्ग को वैकुंठ को जाता होगा, तो क्रिया कृत्यों के आधार पर नहीं वरन मन स्थिति को ठीक करने के आधार पर ही जाता होगा।
स्वर्ग के लिए महात्म्य यदि लिखा है कि गंगा स्नान करने वालों को स्वर्ग मिलना चाहिए, तो केवल एक ऐसे ही व्यक्ति के लिए लिखा है और किसी के लिए नहीं। पार्वती जी की समझ में आ गई।
करुणा से बने वाल्मीकि कवि। बेटे
मैं क्या कहता हूँ, मैं हृदय वालों की बात कहता है, कलेजे वालों की बात कहता है, सहृदय लोगों की बात कहता हूँ। क्रौंच पक्षी को घायल देख करके वाल्मीकि की आंखों में आंसू टपकने लगे। उन्होंने देखा कि एक प्रेमी अपने साथी के लिए किस तरीके से तड़प सकता है। तीर से घायल होकर एक साथी तड़प सकता है और दूसरा उसकी पीड़ा को डेख को देख करके तड़प सकता है। दोनों की तड़पन बिजली के तरीके से जिस आदमी के कलेजे पर गिरी वह भी रोया, उसी तरीके से रोया जिस तरीके से वे दोनों रो रहे थे। बस जिस क्षण वाल्मीकि की आंखों में आंसू आए, मित्रों आप सही माना, उसी दिन से उनके मन में काव्य की धारा बहने लगी और वे आदिकवि कहलाए।
कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि का जो कवित्व उस करुणा के रूप में फूटा, वाल्मीकि रामायण उसी के आधार पर लिखी गई। बाद में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अन्य भाषाओं में होता चला गया।
तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी हुआ।
बेटे
वह करुणा जिसमें राम भरत के मिलाप से लेकर के न जाने क्या क्या हम देखते हैं, रामायण पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू कहाँ से आते हैं?
बेटे
ये आंसू वाल्मीकि की आंखों के आंसू हैं और ये क्रौंच पक्षी की आंखों के आंसू हैं जो वाल्मीकि के हृदय में कलेजे में घुसते हुए चले गए।
मित्रों
यह करुणा है जिससे दूसरों के दहकों को देखकर आदमी इतना व्याकुल विह्वल हो जाता है कि हमको इनकी सहायता करनी ही चाहिए।
जटायु ने सीता जी को देखा, सीता जी को रावण लिए जा रहा था। उनका विलाप सुनकर जटायु की आंखों में आंसू आ गए।
विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, इस बच्ची को कैसे छुड़ाऊं, इस बच्ची की सहायता कैसे करूं।
यह सोचकर जटायु तड़प उठा।
उसने कहा, मैं शायद इसको बचा न सकूं, पर अपनी जिंदगी तो उसे बचाने में खत्म कर ही सकता हूं। अपनी पूरी ताकत के साथ वह रावण से लड़ा, अंत में रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए,
वह नीचे गिर गया।
जटायु बेशक हार गया, लेकिन भगवान आए और जटायु को उठाकर कलेजे से लगा लिया और अपने आंसुओं से उसके घावों को धोया और छाती से लगाकर कहा, जटायु मैं तुझे जिंदा कर दूं। तब
उसने कहा, नहीं महाराज जी,
जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ था सो मैंने पा लिया, अब मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा,
इस बुढ़े जीवन से क्या करूंगा,
अब मुझे कोई हवस नहीं है। संत सुधारक और शहीद 3 ही तो आपके यहाँ की सबसे बड़ी डिग्री है।
मैंने 3री वाली डिग्री पाली।
श्रेष्ठता के लिए करे स्वयं को होम।
मित्रों
श्रेष्ठता के लिए आदर्शवादिता के लिए अपने आप को होम देना, अपने आप को खत्म कर देना उसी के लिए संभव है जिसके मन में से बेहिसाब करुणा टपकती हो और बेहिसाब छलकती हो। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं बेटे हमको करुणा ही दिखाई पड़ती है जो आदमी को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाती चली जाती है। जितने भी अच्छे श्रेष्ठ आदमियों को हम देखते हैं वे सब करुणा से भरे हुए हैं।
जापान में कागाबा को गांधी कहते हैं जैसे कि हिंदुस्तान के गांधी थे।
कागाबा कौन है?
बेटे
कागाबा उस आदमी का नाम है जिसने M00 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में यह निश्चय किया कि अपनी बची हुई जिंदगी को दुखियारों के लिए खर्च करूंगा। जिन मोहल्लों में पीड़ित लोग रहते थे, शराबी बीमार कोड़ी लोग रहते थे, उसी जगह उन्होंने अपनी झोंपड़ी डाल ली और जिंदगी भर दरिद्र नारायण की सेवा में समर्पित हो गए। 50 रुपये में अपना गुजारा करने वाले जापान के गांधी कागाबा सारे के दुखियारों की दीनों की पीड़ितों पतितों की सेवा करने में लगे रहे।
जापान की गवर्नमेंट ने जनता ने उन्हें भरपूर सहायता दी। मित्रों भगवान की सहायता किसको मिली?
जिनके पास कलेजा और हृदय है। आपके पास हृदय है कहीं?
जरा अपनी छाती पर हाथ रखकर देखें।
अक्ल तो है पर कितनी बड़ी है। जालिम अक्ल बेईमान अक्ल दुष्ट अक्ल पापी अक्ल पतित अक्ल और कमीनी अक्ल हमारे ऊपर बेहिसाब रूप से हावी हो गई है और हमको न जाने कहां कहां ले जाती है और न जाने क्या से कराती है, न जाने कितने तरह के जाल बुनने को हमें मजबूर करती है और न जाने कहां कहां हमको भटकाती और ले जाती है।
बेटे,
यह अकल एक कोने पर, लेकिन जहां तक आध्यात्मिक जीवन का संबंध है, जहां तक भगवान की भक्ति का संबंध है, जहां तक मनुष्य की श्रेष्ठता और शालीनता का संबंध है, ये सारी की बातें हृदय से ताल्लुक रखती हैं। ये आदमी की उदारता से ताल्लुक रखती हैं।
ये आदमी की श्रद्धा से ताल्लुक रखती हैं। ये आदमी की भक्ति से ताल्लुक रखती हैं।
जो आदमी मुलायम हृदय होगा वह अकेले खा नहीं सकता, जमा नहीं कर सकता, अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके सामने हजारों हाथ पीड़ितों के चारों ओर फैले दिखाई पड़ेंगे। वह खा नहीं सकता।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर के तरीके से वह रो पड़ेगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने देखा कि अमीरी और गरीबी, अमीरी और पिछड़ापन समाज में अभी भी विद्यमान है, जो हमारे समय में था। हमारे पिता सुविधा नहीं जुटा पाए।
हम किताबें मांग करके लाते और स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर के पढ़ते थे।
यदि आज भी ऐसे विद्यार्थी हैं, तो उनकी मुझे सहायता करनी चाहिए। मुझे मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए।
उनके ईमान ने सोचा कि जो भगवान गरीबों के रूप में हजारों हजारों हाथों से आदमी से मांगता और पुकारता है, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए।
मित्रों,
अगर ईमान हमारे और आपके भीतर हो तब, उदार हृदय हमारे पास हो तब। पर हम तो हृदयहीन हैं। हृदय कहीं से धड़कता तो है, लपप लपप करता तो है, पर यह लोहार की धौकनी के तरीके से है। इसमें करुणा का नाम भी नहीं है, दया उदारता का नाम भी नहीं है।
इसमें तो महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं और लिप्साएं इतनी ज्यादा जमा हो गई हैं कि हमारे पास कुत्साएं और कुंठाएं ही भर गई हैं।
यहाँ आकर के भगवान क्या करेगा, यहाँ आकर के देवी क्या करेगी, यहाँ आकर के आध्यात्मिकता क्या करेगी।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर को 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी।
उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि आप लोगों को 50 रुपये महीने में ही गुजारा करना पड़ेगा, आपके ऊपर ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। 450 रुपये महीने के बारे में उन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि जो विद्यार्थी यह अनुभव करते हों कि हमारे पास किताबों, पेंसिल, मिट्टी के तेल, फीस आदि की कमी है या दूसरी चीजों की कमी है, वे हमारे घर से ले जाया करें। सब बच्चे आते और अपनी जरूरत की चीजें ले जाते।
मित्रों, उस जमाने में भले ईमानदार आदमी रहे होंगे, लेकिन आजकल जैसे बेईमान और चालाक कम रहे होंगे।
आज तो फीस माफ करवाने के लिए मालदारों के बच्चे अपने रिश्तेदारों के नाम पर फीस माफ करवा लेते हैं और जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, वे गरीब रह जाते हैं। आज सब बंटाधार होता चला जा रहा है। किसी जमाने में लेने वालों में भी शराफत थी और देने वालों में भी शराफत थी।
केवल वे ही विद्यार्थी पाते थे जो पाने के हकदार होते थे। 450 रुपये में हजारों विद्यार्थी लाभ उठाते। कोई पेंसिल, कोई मिट्टी का तेल, कोई कॉपी, कोई फीस मांग ले जाते।
450 रुपये में सैकड़ों हजारों बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर निहाल होते थे।
भगवान की भक्ति का सही तरीका, भगवान की भक्ति का यही तरीका है। दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ आदमी हुए हैं, वे सब हृदयवान आदमी हुए हैं, कलेजे वाले आदमी हुए हैं, सहृदय आदमी हुए हैं।
सहृदय आदमी की पहचान यह है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पैरों से पहले कुचलता है। अमीरी भी होगी और हम दान करेंगे। नहीं बेटे, तू ढोंग करेगा, लोगों के ऊपर छाप डालेगा कि हम बड़े अमीर हैं, हम बड़े दानी हैं।
धर्मशाला पर पत्थर लगाने के लिए पैसा देगा और लिखवाएगा कि 200 रुपया लाला चुन्नूलाल, बेटा मुन्नूलाल का, पोता सुन्नूलाल का, इसने अपनी नानी के, दादी के, मौसी के स्वर्गवास में 151 का दान दिया।
बड़ा भारी दान दिया, बड़ा भारी दानी है। तेरी बात हम सब जानते हैं कि तू कैसा दानी है। नाम के लोभी, यश के लोभी, अगर किसी अच्छे काम के लिए तेरा देने का मन होता तो भगवान तेरे पास आ जाता और तू भगवान का हो गया होता।
मित्रों,
विज्ञानमय कोश, जिसको हम हृदय चक्र कहते हैं, यह मनुष्य की करुणा से ताल्लुक रखता है, दया से ताल्लुक रखता है, मुलायमियत से ताल्लुक रखता है, कोमलता से ताल्लुक रखता है, श्रद्धा भक्ति से ताल्लुक रखता है। ये गुण अगर आपके भीतर पैदा होने लगे तो बेटे आप विश्वास रखना कि भगवान आपके भीतर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं और जिसके हृदय में भगवान विराजमान हैं, उनकी हैसियत हनुमान के तरीके से होनी चाहिए। हनुमान जी को सीता जी ने मणिमाला दी और वे चबा चबा कर फेंकने लगे तो सीता जी ने पूछा, हमने इतनी कीमती माला आपको दी है, आप इसको क्यों फेंकते हैं?
हनुमान जी ने कहा, हमारे हृदय में भगवान विराजमान हैं।
अरे, हृदय में भगवान कैसे विराजमान हो सकते हैं?
हनुमान जी ने अपना कलेजा हृदय चीर करके दिखाया और कहा, देखिए हमारे हृदय में बैठे हुए हैं।
आप भी हनुमान के तरीके से हो सकते हैं। हृदय चीरने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, एक्सरे करवाने की जरूरत नहीं है कि देखिए भगवान हमारे हृदय में है।
मित्रों,
भगवान मनुष्य के हृदय में करुणा के रूप में, दया के रूप में, उदारता के रूप में, सेवा और शालीनता के रूप में आते हैं। अगर इस तरीके से भगवान आए तो समझना चाहिए कि आप भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों को जो अनुग्रह परमपिता देते हैं और उन अनुग्रहों को पाकर के किस तरीके से फलते और फूलते रहे हैं, अपनी नाव में स्वयं पार होते रहे हैं और अपनी नाव में असंख्यों को बैठाकर पार करते रहे हैं। वह रास्ता अभी भी खुला हुआ है।
वह राजमार्ग जहाँ का है,
वह राजमार्ग रुका नहीं है, न आपके लिए रुका है और न किसी और के लिए रुका है। न भगवान के भक्तों ने कोई और रास्ता ढूंढा, न आपके लिए कोई और नया रास्ता बन सकता है। अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यदि आप कदम बढ़ा सकते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, आपसे वायदा कर सकता हूँ कि आध्यात्मिकता के जो गुण, भगवान की भक्ति के जो महत्व बताए गए हैं, वे 100% सही हैं। उनका लाभ आप भी उठा सकते हैं। मैंने भी लाभ उठाने की कोशिश की तो वैसा ही पाया जैसा कि ऋषियों ने लिखा है।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।